तो अभी हमें मैंने बहुत पहले 12 चैप्टर लिए थे, पर आपको दूसरे भक्तों ने भी 12 चैप्टर लिए हैं, 12 अध्याय, तो 13वें से 18वें अध्याय तक हमें लेना है। उसमें लगभग 212 श्लोक हैं और हमारे पास लगभग 14 दिन हैं। 3 तारीख को मैं जा रहा हूँ, तो उसका मतलब है रोज हमको लगभग 15 श्लोक लेने पड़ेंगे। तो ज़्यादा फास्ट नहीं है ये, हम हो जाएगा तो हम टाइम पे अगर आएंगे तो हम फास्ट चालू कर सकते हैं। मैं टाइम पे हमेशा कंप्लीट करूँगा, मैं ज़्यादा टाइम से ज़्यादा लूँगा नहीं, क्लास 3:15 को हम शार्प कंप्लीट कर देंगे। तो सारांश में इसके पहले क्या हुआ है मैं बोलूँगा, पूरे 12 अध्याय का अगर पूरा ओवरव्यू करना है पुनः तो उसमें पूरा एक दो ओवर पास चले जाएंगे, तो सिर्फ बहुत संक्षिप्त में करूँगा मैं। तो भगवद्गीता की शुरुआत होती है, अर्जुन के मन में सवाल है मैं युद्ध कैसे करूं, मेरे ही रिश्तेदारों को और उसे न केवल रिश्तेदारों को पर मेरे बुजुर्गों को कैसे मैं वध कर सकता हूं। तो भगवान जवाब देते हैं सबसे पहले दूसरे अध्याय में कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, इसीलिए आप आत्मा के स्तर पर कार्य करो। तो जो व्यक्ति आपका धर्म जो है आप करो, उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, और जहां तक जिन्होंने बुरा कर्म किया है उनको सजा देना ही सत्य कर्तव्य है, और उनका विनाश नहीं होने वाला है, वे अविनाशी है और वे उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसका फल उन्हें मिल जाएगा इस युद्ध में, उनकी मृत्यु हो जाएगी, पर उनके जो बाकी सत्कर्म हैं खास करके द्रोण भीष्म उसके अनुसार उनको ऊंचा शरीर भी मिल जाएगा। तो ये तो उसमें दूसरे अध्याय में भगवान अधिकांश रूप से 11 से 30वें श्लोक में कर्म आत्मा और शरीर के बीच फर्क बोलते हैं, फिर सांख्य योग है वो, उसके बाद में कर्मयोग के बारे में बोलते हैं और भक्ति का थोड़ा सा उल्लेख है। फिर भी अर्जुन के मन में सवाल रहता है कि अगर मैं कार्य नहीं करूँगा, अगर मैं कार्य करूँगा तो बंधन में तो पड़ूंगा ही। तो वही सवाल तीसरे अध्याय में भी आता है, 5वें अध्याय में भी आता है, लगभग समान ही सवाल है। और दोनों में फर्क यह है कि भगवान ने तत्वज्ञान बता रहे हैं कि कर्मयोग कैसे बंधन में नहीं पड़ता है, कर्मयोगी वह और गूढ़ होता जा रहा है, और फिर कर्मयोग से ही केवल परिपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। कर्मयोग अगर हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे सीढ़ियाँ, कर्मयोग से व्यक्ति को अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो या तो उसको ज्ञान योग स्वीकार करना चाहिए, मतलब इस जगह यहाँ पे अगर वो भौतिक स्तर पे है जहाँ पे मतलब कर्मकांड या कर्मी है तो उससे कर्मयोग से एक स्तर तक आ सकता है वो, पर उसके बाद में अगर ऊपर जाना है तो फिर दूसरा कोई मार्ग अपनाना है, या तो ज्ञान योग लेना है, या तो अष्टांग योग लेना है, या तो भक्ति योग लेना है, इन तीनों में से। सो 6 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आरुरुक्षोर मनिर्योगं कर्म कारण उच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारण उच्यते, कि शुरुआत में व्यक्ति कर्म करना चाहिए, बाद में कर्म का त्याग करना चाहिए। तो इन तीनों में से तीनों तरह से ऊपर जा सकते हैं, ज्ञान योग से ध्यान योग और अष्टांग योग की है। अष्टांग योग को 4 अलग अलग नाम से बोला जाता है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, हठ योग है और कुंडलिनी योग है, ये सब एक ही है लगभग। तो उसमें साधारणतया हठ योग जो है, ये ध्यान जो अष्टांग योग है उसके पहले 4 जो स्तर होते हैं उनको हठ योग से बोला साधारणतया, और जो कुंडलिनी योग भी है उसी को पहले 4 स्तरों को बोला जाता है, पर ये चारों ये 8 जो है प्रभुपाद जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वह समान ही है। तो 6 अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं कि ठीक है अभी कर्मयोग से आप जितने परिपूर्णता प्राप्त कर सकती प्राप्त कर ली, उसके बाद में अभी आप ध्यान योग करो। तो ध्यान योग करते समय भगवान क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह से वे वर्णन करते हैं कि कैसे उसे जंगल में जाना चाहिए, पर हर स्तर में कैसे, यद्यपि अष्टांग योग कोई लोग सोचते हैं कि समाधि में जाना है और समाधि का मतलब है लीन होना है किसी ज्योति में, पर 6 अध्याय के 14वें श्लोक में जब किसी को चिंतन करना है तभी बोलते युक्त आसीत मत्परा मनस मत संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत्परा, फिर उसके बाद में योग की परिपूर्णता है। तो 6 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, कि मुझे देखना चाहिए सब जगह। और फिर 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भी जो सारे अध्याय की परिपूर्णता है उसमें बोलते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, योगिनां सर्वेषां मद्गतेनांतरा, मतलब हर स्तर पे योग की साधना में और योग की सिद्धावस्था में क्या है, भगवान का ही चिंतन है। और फिर इसके इस तरह से अभी ये कर्म योग से सीढ़ी, ध्यान योग से भक्ति योग तक पहुंच गई। भक्ति योग तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि मन मुझ में लगाना है, मतलब ये भक्ति योगी है। तो ये धीरे धीरे से सीढ़ी ऊपर गई है। अभी सातवें अध्याय का जो श्लोक है, पहला श्लोक जो है वह शुरुआत उसी स्तर से होती है, मद्गते नांतरात्मा था जो था छठे अध्याय का 47वां श्लोक था। सातवें अध्याय का पहला श्लोक जो है मई आसक्त मना मुझ में मन आसक्त करो। तो ये आसक्त कैसे करना है मन, उसका वर्णन सातवें अध्याय में आता है। तो उस सातवें अध्याय में दैवी ऐशा गुण में वो जो प्रसिद्ध श्लोक है कि मेरे शरण में आ जाओ, सातवें अध्याय का 14 श्लोक है वो। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो जरूर आप माया के परे चले जाओगे। और यही वो भगवान कहते हैं कि ज्ञानवान लोग बहुनाम जन्म नाम अंत वही करेंगे। चलो सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं। तो सातवें अध्याय में स्पष्टता से भगवद गीता में पहली बार भक्ति का वर्णन हो रहा है। उसके पहले भी भक्ति का उल्लेख है, पर वह उल्लेख है, उसका ज्यादा वर्णन नहीं है भक्ति का। भक्ति का उल्लेख उसके पहले 2 अध्याय के 61वें श्लोक में, 3 अध्याय के 30वें श्लोक में, 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, 5 अध्याय के 29वें श्लोक में, और 6 अध्याय के 14वें 15वें 30वें और 37वें 31वें और 47वें श्लोक में अब तक आया है उल्लेख। पर यह सब उल्लेख हो रहा है, पर जो स्पष्टता से जो वर्णन है, जोर देके वर्णन है, वो 7वें अध्याय में होता है। तो 7वें अध्याय का जो अंत होता है, अभी क्या हुआ, 6 अध्याय में जब भगवान ने ध्यान योग बताया तभी अर्जुन ने कहा कि मुझे इस पद्धति से मन को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। बोले दुष्ट, वो बोलते चंचल मना कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़, बड़ा मुश्किल है इसको नियंत्रण करना। तो उसको उसका जवाब देते हुए भगवान क्या जवाब देते हैं कि अभ्यास ने तो कौन दे वैराग्य ने जगह देते, कि आप अभ्यास करो और वैराग्य रखो। तो इस जवाब है उसमें भगवान कोई एक मार्ग का पुष्टिकरण नहीं कर रहे कि ये तत्व है। ये तत्व ज्ञान योगी भी रख सकता है, अष्टांग योगी भी रख सकता है, भक्ति योगी भी रख सकता है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो अभी हम जब जब भी कर रहे हैं तो अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास कुछ भी किसी मार्ग हो सकता है वो। तो अभी अष्टांग योग का भगवान ने यहाँ पे खंडन नहीं किया है। बोलते हाँ ये योग मैंने ही बताया है, पर आपको क्या करना है, मन नियंत्रण करना जरूरी है। भी कैसे करना है वह उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो यहां पे तो दुष्कर्म जो भगवान अर्जुन ने बताया था कि बड़ा मुश्किल है ये, तो इसका जवाब 8वें अध्याय में आता है। तो 8वें अध्याय में भगवान अष्टांग योग और भक्ति योग की तुलना करते हैं। और सारे भगवद गीता में एक ही जगह है भगवान जहां पे कोई विधि सुलभ है बोलते हैं, एक ही जगह सुलभ जो है बिल्कुल, ये जो अर्जुन ने बताया है दुष्कर्म उसके विरुद्ध में, यह आता है 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, जो मेरी भक्ति में लगेगा सुलभ, बड़े आसानी से वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो 8वां अध्याय जो है वह भक्ति योग और अष्टांग योग की तुलना है, और स्पष्ट रूप से भक्ति योग ही कैसे सर्वश्रेष्ठ ये बताया गया। तो ऐसे तुलनात्मक जो चर्चा इसके पहले ये एक बार हुई है कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में, 3रे अध्याय में भी हुई है और 5वें अध्याय में हुई है। वहां पे भगवान ने कर्मयोग पर जोर दिया है। 5वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान बोलते हैं कैसे कि दोनों अच्छे हैं पर उनमें से कर्मयोग ज्यादा अच्छा है। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराहु भव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दोनों अच्छे हैं क्योंकि दोनों बंधन से मुक्ति कराते हैं, पर उनसे कर्मयोग अच्छा है। तो ऐसे तुलनात्मक से चर्चा जो हो रही है पहले कर्मयोग और ज्ञान योग में हुई, अभी 8वें अध्याय में अष्टांग योग और भक्ति योग में हुई, फिर 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं एक और एक्चुअली 4 पद्धति से वो तुलना करते हैं कैसे अष्टांग योग से बेहतर है भक्ति योग। बोलते हैं उसकी आसानी है और फिर उसका जो अलग अलग पद्धति है, उसमें मृत्यु का समय भी आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको इस समय पर मृत्यु होनी है, उस समय पर मृत्यु होनी है, नहीं तय श्रुति मार्थ जान योगी मोहिति कश्चन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मेरा स्मरण करो आप मुक्त हो जाओगे। और फिर इसके बाद में भगवान ने भक्ति योग का ही गुणगान किया है 8वें अध्याय में तुलनात्मक पद्धति से, फिर उसके बाद में 9वें अध्याय में वे भक्ति योग का ही और स्पष्टीकरण करते हैं। से तीसरा और पांचवें अध्याय में कई समानता है, वैसे सातवें और नौवें अध्याय में भी कई समानता है। और वही पर क्या है, उसमें वही विषय को और गूढ़ ले जाते हैं। तो भगवान नौवें अध्याय में जो ज्ञान योग है उसके बारे में वर्णन करते हैं, मायावाद के बारे में वर्णन करते हैं, फिर देवी देवताओं की पूजा है और उनकी भक्ति है उसकी तुलना करते हैं, और उसी में वो विख्यात लोग आते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां। भगवान बोल रहे हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्तलोकम चित्तो। 21वें श्लोक में बताते हैं वे कि जो देवी देवताओं की पूजा करके जाता है स्वर्ग में वो नीचे आ जाएगा वापस, पर मेरी पूजा करेगा वो वापस नहीं आएगा, मैं उसका संरक्षण करता हूँ। और फिर वहां पर भी भक्ति का गुणगान वो चार पद्धति से करते हैं, वो कितना आसान है, कितने नीचे के स्तर से भी लोगों को उठा सकता है और कितना शाश्वत फल प्रदान करता है, और वह इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने के लिए सबसे उत्कृष्ट मार्ग है। फिर इसके बाद में 10वें अध्याय में जो चतुश्लोक की भगवद गीता है वह संपूर्ण भक्ति के बारे ही में है, 8वां 9वां 10वां 11वां। वास्तव में इसमें जो 8वां श्लोक है उसमें संक्षिप्त रूप से संबंध अभिधेय प्रयोजनों बताया गया है, फिर 9वें श्लोक में जो है प्रयोजन बताया गया है, 10वें और 11वें श्लोक में अभिधेय बताया गया है, इसका हम चर्चा नहीं करेंगे। पर इसके बाद में अर्जुन अपना निष्कर्ष बताते हैं, तो पूरे भगवद गीता में अर्जुन अपना निष्कर्ष दो जगह बताते हैं, एक तत्वज्ञान के स्तर पर निष्कर्ष जो है वो 10वें अध्याय के 12वें 13वें 14वें श्लोक में बताते हैं और 15वें भी, और कार्यात्मक रूप से जो उनका निष्कर्ष है वह 18वें अध्याय के अंत में बताया गया, वो वहां पे 73वें श्लोक में बताते हैं, करिष्ये वचनं तव। तो साधारणतया अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से क्या जाएगा तो क्या होना चाहिए, डॉक्टर क्या बीमारी है वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाए अच्छी तरह से, और फिर क्या दवाई दी है वो समझ में आना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि भगवदगीता में बहुत सी चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए, पर हाँ भगवदगीता का निष्कर्ष क्या है पता करना है तो जो भगवदगीता का आदि विद्यार्थी जो है उसका निष्कर्ष क्या है वो देखना चाहिए। तो वहां पे स्पष्ट रूप से बताते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, कि जो आप ही परम सत्य हो। और इसके बाद में अर्जुन जो सवाल पूछते हैं वह सवाल और बाकी उनकी समझ पूरी स्पष्ट हो गई है, अभी जो सवाल पूछ रहे हैं वो जन कल्याण के लिए सवाल पूछ रहे हैं। तो वास्तव में ये सवाल का संबंध जो है वह 9वें अध्याय का 15वां श्लोक है उससे संबंधित है, 9वें अध्याय का 15वां श्लोक जो है वह उसका विस्तार बाकी पूरे भगवदगीता में होता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो उसमें जो बहुधा विश्वतो मुखम जो विश्व रूप का वर्णन है, आप कैसे संपूर्ण विश्व के में व्याप्त हुए हो उसका जो वर्णन है वह 10वें अध्याय के विभूति योग और 11वें अध्याय के विश्व रूप दर्शन में होता है, कि आप कैसे सब जगह पर व्याप्त हैं। और फिर उसके बाद में जो बहुधा पृथक्त्वेन बहुधा जो है कि आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हो उसका वर्णन तो वहीं पर भगवान ने तुरंत उसके बाद में ही कर दिया जो मैंने अभी बताया था। और फिर जो एकत्वेन का वर्णन है, एकत्वेन मतलब कि भगवान में लीन जाना, तो उसका जो स्पष्टीकरण है वो 12वें अध्याय में होता है। तो 12वें अध्याय में तो 10वें और 11वें अभी क्या होता है अब अगर आप देखेंगे तो सारे जो अध्याय है 10वां 11वां 12वां 13वां ये सब सवालों से शुरुआत हो रही है। और अगर आप ये सवाल देखोगे तो बहुत से लोग कहते हैं भगवद गीता का कुछ संबंध नहीं है एक दूसरे चीज से, तो वास्तव में 11वें अध्याय के अंत से 12वें अध्याय की शुरुआत में ज्यादा कोई संबंध नहीं लगता है, क्योंकि अभी विभूतियों के बारे में बताया है और अचानक अर्जुन में क्यों इतना बड़ा दिव्य दर्शन हो गया, फिर उसके बाद में निर्विशेषवाद भक्ति और निर्विशेष के बारे में क्यों तंत्र प्रयोग कर, तो जो वहां पे बताया था कि अलग अलग पद्धतियां है उसका स्पष्टीकरण हो रहा है वहां पे। तो 12वें अध्याय का जब अंत होता है, 12वां अध्याय और 15वां अध्याय ये भगवद गीता के सबसे छोटे अध्याय है, 20-20 श्लोक है, भगवद गीता के सबसे बड़े जो अध्याय है वो 18वां अध्याय 78वें श्लोक और दूसरा अध्याय 72वें 72 श्लोक है वहां पे। तो अभी 12वां अध्याय का अंत जो होता है वो क्या है, अभी 12वें अध्याय में बहुत सुंदर उसमें विचार का प्रवाह है। पहले भगवान स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मण की उपासना से मेरी भक्ति बहुत अच्छी है, और यह जो भक्ति भगवान बताते हैं वह जो है 12वें अध्याय में वो मायावाद का वर्णन नहीं कर रहे, वे ब्रह्मवाद का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मवाद से भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पर बहुत समय लगेगा, क्लेशो अधिक तरस्तेषां, भगवान बताते हैं 12वें अध्याय के 6 श्लोक में, और फिर 5वें श्लोक में, फिर 6वें 7वें श्लोक में बताते हैं कैसे मेरी भक्ति करो, तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। अभी क्या हो रहा है, मतलब कि 6वें अध्याय में भक्ति के बारे में बता, भक्ति का पता 7वें अध्याय में भक्ति का वर्णन चालू हो गया, वो 12वें अध्याय तक चला, और जो 12, 6 और 7 उसमें भक्ति की महिमा बताई गई है, सबको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और फिर जो ऐसे धीरे धीरे पहले मतलब अगर आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि कोई बड़ा पहाड़ है, तो पहाड़ पे चढ़ने का एक धीरे 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 एक मार्ग है, बहुत लंबा चौड़ा मार्ग है, फिर उसके बाद में उस पर लंबे ऐसे समान जगह है, तो जो धीरे धीरे बहुनाम जन्मना मंत्र जो चढ़ना है वो पहले 6 अध्याय बताए, फिर उसकी परिपूर्णता है योगी मत गते नांतरात्मना। तो अभी फिर शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है कि वो बता भगवान बताते हैं कि आप सारा मन मुझ में लगा दो, कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत परा, पूरा मन मुझ में लगा दो, ये बड़ा मुश्किल है, कैसे लगा सकते हैं। तो फिर वो एक दूसरी एक सीढ़ी बता रहे हैं, तो 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान क्या बता रहे हैं, एक दूसरी पद्धति। पहले उन्होंने बताया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ, सब योगों से सर्वश्रेष्ठ भक्ति ही है, पर अभी भक्ति तक पहुंचेंगे कैसे, एक तो बताया कि कैसे कर्मयोग ज्ञान योग उससे धीरे धीरे भक्ति तक पहुंच सकते हो, पर यहां पे बताते हैं वो कि आप अलग अलग स्तर पे भक्ति कर सकते हो। पहले बताते हैं कि आप पूरा मन और बुद्धि मुझ में ही लगा दो, वो नहीं हो सकता है तो कम से कम अपना मन जितना हो सकता है उतना लगा दो, उतना नहीं हो सकता है तो कम से कम आप जो मेरा मेरा कर्म करो, मेरी सेवा करो, अगर मेरी सेवा नहीं कर सकते हो तो जो काम करते हो करो, उसका फल तो मुझे अर्पण करो। यह कर्मयोग नहीं है, ये बोलते हैं ये कर्म मिश्र भक्ति योग है। फिर उसके बाद में इस विभाग में विश्वनाथ चक्र ठाकुर का इतना जटिल वर्णन करते हैं, वो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अगर उसका चर्चा करना है तो वो एक श्लोक का तात्पर्य देने के लिए लगभग 1-2 घंटा लग जाएगा, वो बहुत जटिल है, उसमें हमने जाएगा नहीं, पर बेसिकली क्या है, फिर वहां बोलते अगर आप मुझे फल भी प्रदान नहीं कर सकते तो कम से कम अपना फल तुम त्याग करो किसी अच्छे कार्य के लिए, क्या उससे कम से कम जो त्याग की भावना है वह प्राप्त हो जाएगी, त्याग शांति अनंतरम। और फिर उसके बाद में बताते हैं कैसे आप अलग अलग गुणों का अनुशीलन कर सकते हो जिससे कि आप भक्ति में प्रगति कर सकते हो। तो इस तरह से भक्ति को कैसे प्राप्त करना है उसका वर्णन है। अभी 13वें अध्याय की जो हम शुरुआत करने वाले हैं अभी, तो ये अभी तक मैं बोला काफी टेक्निकल लग रहा होगा आपको, तो ये 13वें अध्याय थोड़ा टेक्निकल है, पर जहां तक हो सकता है मैं आसान करने का प्रयास करूंगा। पर 13वें अध्याय का अभी 12वें अध्याय से तुरंत कोई संबंध नहीं है, संबंध ही है एक तरह से, क्या संबंध है, वह एक प्रवाहात्मक रूप से नहीं है, वह विचारात्मक रूप से। मतलब क्या है कि कैसे होता है, अगर आप कोई प्रवचन हो रहा है तो प्रवचन के अंत में जो प्रश्नोत्तर, प्रवचन में होती है एक प्रवाह होता है, पर प्रवचन के बाद जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो प्रश्नोत्तर में कोई प्रवाह नहीं होता है, एक व्यक्ति एक सवाल पूछेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा सवाल पूछेगा, एक व्यक्ति भी दो सवाल पूछेगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहला सवाल और दूसरा सवाल एक दूसरे संबंधित हो, तो वो जो दोनों सवाल जो है उचित यह है कि वो जो प्रवचन का विषय है उससे संबंधित हो। तो अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं 13वें अध्याय से, तो भगवद्गीता कैसे बताए, 3 विभाग बताए जाते हैं। पहला विभाग कहते हैं लोग कर्मयोग है, कर्म का भाग है, दूसरा जो है भक्ति का भाग है, और तीसरा जो है ज्ञान का भाग है। वास्तव में ये सही नहीं है, तीनों विभाग भक्ति के बारे में ही है, पर कर्म से कैसे भक्ति में आना है वह पहले 6 अध्याय में बताया गया है, और ज्ञान से कैसे भक्ति में आना है वह दूसरे 6 अध्याय में आखिर 6 अध्याय में बताया गया है। तो अभी अर्जुन जो क्या कर रहे हैं 13वें अध्याय में, वे स्पष्टीकरण चाह रहे हैं कि किस तरह से जो लोग ज्ञान योग सांख्य योग जो करते हैं तो वो जो विचारधारा करते हैं तो उसकी सही समझ क्या है, उसकी सही समझ क्या है, और ज्ञान और भक्ति का संबंध क्या है। अर्जुन सवाल किस तरह से पूछ रहे हैं, इस तरह सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि लोकहितम नृणां, क्या जन कल्याण के लिए सवाल पूछ रहे हैं, तो उसी तरह से अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, वे जन कल्याण के सवाल पूछ रहे हैं। 11वें अध्याय के पहले श्लोक पर अर्जुन बता चुके हैं जो 18वें अध्याय के 33वें श्लोक बताएंगे, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, तो वही चीज बताते हो 11वें अध्याय के पहले श्लोक में, यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो बताते हैं कि आप मोह चला गया है, यद अनुग्रहाय परमं, आपके अनुग्रह के कारण, जो हितक प्रसाद जो बता रहे अंत में वही यहाँ पे भी आता है। तो अर्जुन का मोह चला गया, तो अभी अर्जुन क्या सवाल पूछ रहे हैं, वह सवाल कि जो ज्ञानी है लोग है, जो निर्विशेष ब्रह्म पे चिंतन करते हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो संकल्पना है, उनकी जो शब्दावली है, शब्दावली मतलब हर एक जो कोई भी ज्ञान का विषय होता है उसकी अपनी अपने शब्द होते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को अगर डॉक्टर में क्या बीमारी है बोलेगा तो स्पष्ट कुछ शब्दों में बोलेगा, पर वह डॉक्टर वही बीमार दूसरे डॉक्टर से बात कर रहा होगा तो कुछ और शब्द इस्तेमाल करेगा वो, क्योंकि क्या है वो हर एक ज्ञान की भाग ज्ञान के विषय के अपनी अपनी शब्दावली होती है। तो जो ज्ञान मार्ग की शब्दावली है उसका स्पष्टीकरण अभी अर्जुन चाहते हैं। तो 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो अभी हम दोहराते हैं। यस,
जो पहले 6 अध्याय है वो कर्मयोग है, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि कर्मयोग करते हुए ज्ञान प्रकट होता है, वो उसका आउटपुट है कर्मयोग का, और वो ज्ञान की मैच्योरिटी वो अष्टांग योग तक जाती है, ऐसा एक समझ। तो ये पहले 6 अध्याय और आखिर के 6 अध्याय ये अलग अलग कैसे, मतलब क्योंकि ज्ञान योग से ही कर्मयोग से ही ज्ञान आएगा वहां से, फिर इसको सेपरेट कैसे रखा गया?
अच्छा, तो कर्मयोग से ही ज्ञान आएगा तो फिर उसको अलग क्यों किया गया है पहले 6 अध्याय में और बाकी 6 अध्यायों में 13वें से 18वें अध्याय में? यहाँ पे दो चीजें हैं समझना में। सबसे पहले क्या है कि अर्जुन जब अपने सवाल पूछ रहे हैं तो उनका उनका सवाल ये मैं युद्ध करूँ या युद्ध न करूँ, और युद्ध न करना मतलब क्या है, जंगल में जाके संन्यास ले जाए समान है, और संन्यास मतलब कैसा, वो निष्क्रिय भाव से रहना है। तो वही स्तर पे भगवान अर्जुन के विचारधारा विचारों को जवाब देते हैं, और फिर तभी अर्जुन क्या बता रहे हैं, आप कर्मयोग करो। तो अभी कर्मयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह जो ज्ञान है, देखिए ज्ञान और ज्ञान योग ये दोनों अलग है। अभी भक्ति और भक्ति योग ये दोनों भी एक तरह से अलग है, पर उनमें बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। क्या है कि भक्ति जो एक भाव है जो भक्ति योग की साधना से प्राप्त होती है, पर ज्ञान जो है ये केवल ज्ञान योग से ही प्राप्त होता है ऐसे नहीं है। हम देखते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। तो भागवतों के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7 श्लोक में भगवान बोलते हैं, सूत गोस्वामी बोलते हैं कि वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा ही। तो ज्ञान जो वहां पर बताया जा रहा है 6 अध्याय में वह ज्ञान योग का ज्ञान नहीं है, वह आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान वो अलग अलग मार्गों से प्राप्त हो सकता है, कर्मयोग से प्राप्त हो सकता है, भक्ति योग से प्राप्त हो सकता है, ज्ञान योग से प्राप्त होता है, ध्यान योग से भी प्राप्त हो सकता है। तो वह जो ज्ञान है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान योग से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ब्रह्म ज्योति का ज्ञान होता है, जो अष्टांग योग से ज्ञान प्राप्त होता है वह परमात्मा का ज्ञान होता है, और जो भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है वह भगवान का ज्ञान होता है। तो ये अलग अलग स्तर के ज्ञान है, पर वहां पे जो है ये चर्चा चल रही है तो वहां पे अभी भगवान ने परिपूर्णता बता दी है। तो परिपूर्णता बताने के बाद वह परिपूर्णता प्राप्त करने का एक सरल मार्ग बताने वाले हैं। तो अर्जुन जिस स्तर से है, जिस स्तर पे है, वहां से सर्वोच्च स्तर पे भगवान ले जाते हैं, और फिर वहां पे ले जाने के बाद उस स्तर को प्राप्त करने का सरल मार्ग बताते हैं। जैसे बताया था कि कोई पहाड़ है उसमें लंबा चौड़ा कोई रास्ता नहीं है, बड़े मुश्किल से चढ़ना है, और दूसरी ओर से एक सीढ़ी है आसानी से चढ़ना है, तो ऐसे बताया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी 12वें अध्याय के अंत में अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी भगवद गीता का एक उसके परिस्थिति के अनुसार कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं, और दूसरा है कि परम सत्य के दृष्टिकोण से सवाल जवाब हो रहे हैं। तो परम सत्य की दृष्टि देखेंगे तो पूरा भगवद गीता का उद्देश्य क्या है कि सर्वोच्च साधन क्या है और सर्वोच्च साध्य क्या है, यही स्पष्ट करना है। तो अभी तो परिस्थिति की दृष्टि से जो होता है वह जो चर्चा है वो भी काफी दूर रह गई, शुरुआत जो हुआ था परिस्थिति की दृष्टि से हुआ था, पर जब आगे अगर आप देखेंगे ना यद्यपि युद्ध का भाव हो रहा है, युद्ध का विचार हो रहा है, तो युद्ध करो, यह स्पष्ट रूप से भगवान आखिरी बार वो चौथे अध्याय के अंत में बोलते हैं कि आप युद्ध करो, उठो, तस्मात् तिष्ठे, वो कहते हैं कि तस्माद् अज्ञान संभूत मृतम ज्ञान आसीनात्मन चित्वैन संशय आतिष्ठो तिष्ठ भारत, युद्ध करो। उसके बाद में एक ही बार उल्लेख आता है आठवें अध्याय सातवें श्लोक, तस्मात् सर्वेषु काले मा मनुस्मर युद्ध च। फिर उसके बाद में ग्यारहवें अध्याय में विश्वरूप का दर्शन तभी आता है तैतीसवें चौतीसवें पैंतीसवें श्लोक में, मोस्टली तैतीसवें चौतीसवें पैंतीसवें श्लोक में। उसके बाद में युद्ध का एक भी उल्लेख नहीं आता है, एक भी बार युद्ध का उल्लेख नहीं आता है। और फिर अर्जुन का जवाब भी है, अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन का जवाब क्या है, करिष्ये वचनम् तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। मतलब क्या है कि आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपका भक्त हूं, और अभी आप मुझे युद्ध करने को बोल रहे हैं तो युद्ध करने को बोल रहे, युद्ध मैं करूंगा। तो क्या है, स्क्रिप्चर हैज अ कॉन्टेक्चुअल पार्ट एंड अ इंटरनल पार्ट। कॉन्टेक्चुअल मतलब जो परिस्थिति के अनुसार बताया जा रहा है। तो जो भगवद्गीता के चर्चा की शुरुआत है वो परिस्थिति के स्तर से हो रही है, पर जो आगे जो विचार होता है तो पूरा तत्व की दृष्टि से हो रहा है, जो सतनातन तत्व है उसकी दृष्टि से हो रहा है। तो अभी अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, वह इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि अभी भगवान ने भक्ति और भगवान उनका सर्वश्रेष्ठता स्पष्ट कर दिया है कि भगवद्गीता का उद्देश्य क्या है, सर्वोच्च साध्य क्या है, सर्वोच्च साधन क्या है, इसका स्पष्टीकरण करना। सर्वोच्च साध्य क्या है, भगवान, परम सत्य भगवान है, वही सर्वोच्च साधन क्या है, भक्ति। तो अभी ये सर्वोच्च है, तो इस सर्वोच्च तत्व से बाकी सब चीजों का क्या संबंध है। तो अभी ज्ञान योग जो है उसका स्पष्टीकरण अभी तक भगवान ने नहीं किया है, तो अभी उसका स्पष्टीकरण भगवान यहां पे कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो परिस्थिति के दृष्टि से आए तो आप चार प्रवाह देख रहे हैं, कर्मयोग, अष्टांग योग और भक्ति योग, पर अभी तत्व के दृष्टि से होगा तो फिर ज्ञान योग के बारे में चर्चा हो रही है। स्पष्ट है, तेरहवें अध्याय का पहला श्लोक,
श्लोक वर्णन किए ना अपने वासुदेव भगवती, उसमें द नॉलेज, दैट नॉलेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ भक्ति,
करेक्ट,
करेक्ट ना,
यस,
नॉट इट्स दैट
राइट, या मैं वही बोल रहा था कि वासुदेव भगवती जो है श्लोक उसमें ज्ञान जो है भक्ति के कारण आता है, इसीलिए उसको अहेतुकी बताया गया है। मैं भी बताया था कि ज्ञान ये केवल ज्ञान योग से ही नहीं आता है, अलग अलग मार्गों से भी आ सकता है, उसके लिए उल्लेख उदाहरण दिया था उस श्लोक का, तो भक्ति से भी ज्ञान आता है। तो तेरा अध्याय का पहला श्लोक, आप सबके पास गीता है, अर्जुन उवाच, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, अर्जुन उवाच,
अर्जुन उवाच,
प्रकृतिं पुरुषं चैव,
प्रकृतिं पुरुषं चैव,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च,
एतद्वेदितुमिच्छामि,
एतद्वेदितुमिच्छामि,
ज्ञानं ज्ञेयं च केशव,
ज्ञानं ज्ञेयं च केशव।
यहाँ पे छह चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। तो अभी जो भगवान सवाल पूछ रहे, अर्जुन सवाल पूछते हैं, उसका जवाब ही अधिकांश ये चैप्टर है, तो ये अध्याय है। तो सबसे पहले एक्चुअली मेरे पास पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन, पर वो हिंदी में भाषांतर नहीं कर पाए, इसलिए हम यूज नहीं कर रहे, तो मैं संक्षिप्त में भी बोलूंगा इसमें क्या हो रहा है। तो जो पहला सवाल है ज्ञान और, तो जो पहले प्रकृति और पुरुष के बारे में पूछते हैं अर्जुन, पर प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान अंत में जवाब देते हैं। तो सबसे पहले वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बोलेंगे। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो दूसरे और तीसरे श्लोक में बोलते हैं वो, फिर चौथे से सातवें श्लोक तक वो क्षेत्र के बारे में बोलते हैं, फिर आठवां से बारहवें श्लोक तक ज्ञान के बारे में बोलते हैं, फिर तेरहवें से उन्नीसवें श्लोक तक वे ज्ञेय के बारे में बोलते हैं। 19 मैं पुनः दोहराता हूं एक बार, क्या हो रहा है, दूसरे और तीसरे श्लोक में वो क्षेत्रज्ञ के बारे में बोलेंगे, दूसरे और तीसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के बारे में, फिर चौथे से सातवें श्लोक में वे क्षेत्र के बारे में बोलेंगे। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी ये हो गया, उसके बाद में आठवें से बारहवें श्लोक में वे ज्ञान के बारे में बोलेंगे, और फिर तेरहवें से उन्नीसवें श्लोक तक वे ज्ञेय के बारे में बोलेंगे, ज्ञेय के बारे में बोलेंगे, और फिर वो प्रकृति और पुरुष का दोनों का साथ में ही बोलते हैं 20वें श्लोक से 26वें श्लोक तक, 27वें श्लोक तक आप कह सकते हैं। एक्चुअली ये इस चैप्टर इस अध्याय में हम देखें कई बार भगवान ही बोलते हैं, अभी ये विषय का मैं बोल चुका हूँ, अभी इस विषय पे बोलने वाला, तो जो प्रवाह है भगवान स्पष्ट कई बार करते हैं। और जो आखिरी विभाग है 28 श्लोक से 35वें श्लोक तक, वह जो है उसको ज्ञान चक्षु बताया गया है। ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु क्या है कि ये सारे तत्व है, अलग अलग चीजें, छह चीजों के बारे में भगवान ने वर्णन किया, पर ये छह चीजों को एक साथ में लाके ज्ञान से हम जगत को किस तरह से देख सकते हैं उसका वर्णन है। तो कभी कभी कहते हैं कि आजकल कंपनियां होती है, कंपनी में कस्टमर केयर होता है, तो कस्टमर केयर होता है तो बोलते हैं कि अगर आपको आपको आपके कंपनी का बहुत अच्छा रेप्यूटेशन चाहिए, उसका बहुत अच्छा नाम चाहिए, तो क्या करना चाहिए, जो ग्राहक की अपेक्षा है उससे अधिक सेवा करनी चाहिए उसकी। तो भगवान यहाँ पे वही कर रहे हैं, जो अर्जुन पूछ रहे उससे अधिक बता रहे हैं। तो 27वें श्लोक तक अर्जुन ने सवाल पूछे उसको खत्म हो गया हो, पर 28 से 35 श्लोक जो है वो बोनस जैसे है, उसमें ये सारा जो बताया है उसका समन्वय कैसे किया जा सकता है, उसको संगम करके कैसे हम ज्ञान की दृष्टि से वो बताया गया है। तो अभी भगवद्गीता में 700 श्लोक है, पर भगवद्गीता के अलग अलग प्रतियां हैं, उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत भेद होता है। जो गीता प्रेस की जो भगवद्गीता है गोरखपुर में जो है, तो उसमें ये पहला श्लोक नहीं है, 13वें अध्याय जो पहला श्लोक वो नहीं है। तो अभी हमारे आचार्य जो है उन्होंने श्लोक बताया है और प्रभुपाद जी ने जो श्लोक का इस्तेमाल किया है, तो फिर भी 700 श्लोक कैसे होते हैं। अगर आप देखिए कई जगह पे भगवान भगवद्गीता में प्रभुपाद जी दो श्लोकों को, कभी कभी एक श्लोक को ऐसे विभाग करते हैं ताकि उसमें 6 पंक्तियां आ जाए। अगर अंग्रेजी में तो 6 पंक्तियां, हिंदी में देखेंगे तो देवनागरी में देखेंगे 3 पंक्तियां, ऐसे तो कई जगह करते हैं वो, छठे अध्याय के 23वें श्लोक में वो करते हैं इस तरह से, या फिर कोई जगह पे करते हैं कि जो श्लोक है उसमें 2 ही पंक्तियां है अंग्रेजी में, या हिंदी में 1 ही पंक्ति है, उस तरह से भी उसका विभाजन करते हैं। चौथे अध्याय के आई थिंक वो 31वें श्लोक में, 31वें श्लोक नायम लोकोस्ते कस्य उतना ही श्लोक है, तो उसके कारण उस श्लोकों का विभाजन अलग अलग तरह से किया जाता है, तो उसके कारण वो जो संख्या होती है बराबर 700 आ जाती है। तो प्रभुपाद जी ऐसे विभाजन क्यों करते हैं कभी कभी आधा, क्योंकि वो सिर्फ प्रभुपाद जी क्या है संस्कृत के नियमों के ग्राही नहीं है, वे सारग्राही या भावग्राही है। तो कभी क्या देखते हैं, कभी कभी अगर 2 श्लोक है उनमें से जो विचार का प्रवाह एक श्लोक से चल रहा है, दूसरे श्लोक में वही विचार का प्रवाह चल रहा है, और उसका आधा भाग एक विचार है, दूसरा भाग है दूसरा विचार है, तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं उस श्लोक को पहले श्लोक में डाल देते हैं और फिर अगले श्लोक में दूसरा भाग डाल देते हैं। तभी भगवान अपना जवाब शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच,
श्री भगवान वाच,
इदं शरीरं कौन्तेय,
इदं शरीरं कौन्तेय,
क्षेत्रमित्यभिधीयते,
क्षेत्रमित्यभिधीयते,
एतद्यो वेत्ति तं प्राहु,
एतद्यो वेत्ति तं प्राहु,
क्षेत्रज्ञेति तद्विदा,
क्षेत्रज्ञेति तद्विदा।
ओ अर्जुन ने पूछा क्षेत्र क्षेत्र में क्या है, तो भगवान जी इदं शरीरं कौन्तेय, ये शरीर जो है वह क्षेत्र है। अभी क्षेत्र ये शब्द हिंदी में भी बहुत बार आता है, तो क्षेत्र मतलब क्या होता है कि किसी अगर कोई इलाका है उसका अगर विभाजन करते हैं और फिर वो विभाजन का उसका नियंत्रण अगर किसी को भाग दिया जाता है, ऐसे अभी बेलगांव जो है यह एक क्षेत्र है, ये भी महाराष्ट्र में है या कर्नाटका में, तो इस पर कोई थोड़ा बहस चल रहा है। जो क्षेत्र होता है मतलब ये एक क्षेत्र है, एक इलाका है जो किसी तरह से विभाजित किया गया दूसरे इलाकों से। तो जो हम बाद में देखेंगे प्रकृति और क्षेत्र उसमें संबंध क्या है, प्रकृति मतलब भौतिक तत्व, तो अभी ये टेबल भी प्रकृति है, ये दीवान भी प्रकृति है, एक कुर्सी भी प्रकृति है, आप जो जमीन पर बैठे वो भी प्रकृति है, ये सब प्रकृति है, और मेरा शरीर आपका शरीर ये भी प्रकृति है, पर अभी ये सारे प्रकृति पर मेरा नियंत्रण नहीं है। पर जो प्रकृति का विभाग जिसपे किसी आत्मा को नियंत्रण दिया गया है वह उसका क्षेत्र बताया गया है। तो अभी हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार का क्षेत्र प्राप्त होता है। अभी एक छोटा सा जंतु होगा, चींटी होगी, उसका क्षेत्र बहुत ही छोटा है, केवल अपना शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं और शरीर इतना छोटा है। कोई बड़ा महाकाय हाथी है, उसको अपने पूर्व कर्म से जो क्षेत्र है उस पर काफी नियंत्रण, बड़ा क्षेत्र है नियंत्रण करने के लिए। अभी हम सब मानव है, हमारे मानव के शरीर के ऊंचाई में मोटाई में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर उसके अलावा क्या होता है, जो स्थूल स्तर, स्थूल मात्रा में भी क्षेत्र नहीं होता है, सूक्ष्म होता है। क्या होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं उनको बोलने में कठिनाई होती है, वो क्या उनको हिचकिचाते हैं, या शब्द वो हिंदी में क्या बोलते हैं,
हकलाते
हैं वो, तो ये क्या हो रहा है, मतलब उनके पास भी गला है पर क्या है, वो क्षेत्र पे नियंत्रण नहीं है। तो हमें हमारे क्षेत्र पर नियंत्रण, प्रकृति का जो विभाग जिससे हमारे नियंत्रण में आ गया उसको हम क्षेत्र कहते हैं, और फिर वह क्षेत्र पे भी हमें पूरा नियंत्रण होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभी मेरा शरीर जो है ये मेरा क्षेत्र है, आपका शरीर आपका क्षेत्र है, इसलिए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, और फिर एतत् यो वेत्ति तं प्राहु, जो इस क्षेत्र को जानता है, जो इसका जानने वाला है, जानकार व्यक्ति है, वो कौन है, वह क्षेत्रज्ञ है। वो कौन है, वो आत्मा है। मैं मेरे शरीर को जानता हूँ, आप अपने शरीर को जानते हो, इस तरह से जो आत्मा है वह शरीर का ज्ञात है, ज्ञानी है, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ बताया गया है। ठीक है, तो अभी यह बताने के बाद अगले श्लोक में बताया गया भगवान कि एक और क्षेत्रज्ञ है।
क्षेत्रज्ञ जो है, मतलब हम किसी को नियंत्रण करने का दे रहता है, लेकिन ये भगवान के सेवा में ये वो नियंत्रण करने का कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है।
अगर हमें ये क्षेत्र मिला है वो हम नियंत्रण करने के लिए हमें उसमें शक्ति दी गई है, पर हम कहते हैं कि हमको भगवान की सेवा करनी, किसी चीज़ का नियंत्रण नहीं करना है, तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? नहीं, वास्तव में हम सब भी नियंत्रक है, पर हमें हमारा जो नियंत्रण है भगवान के अध्यक्षता के अनुसार करना है। अभी क्या है, जो हमारे गुरुदेव है उनको कितना नियंत्रण करने का शक्ति मिलता है, मतलब जो शिष्य है उनके अपने सब कुछ उनकी सेवा के लिए त्यागने के तैयार होते हैं, और शास्त्र भी बताया आपको ऐसे करना चाहिए। तो अगर अभी आत्मा को बताया है कभी किसी का नियंत्रण नहीं करना चाहिए तुम्हें, और फिर वही शास्त्र बताया गुरु को कि आप शिष्यों के पूरे नियंत्रण बन जाओ, तो कैसे संभव है? मतलब क्या है कि भगवान की सेवा में नियंत्रण करना यह उचित ही है। भगवान के भगवान को ठुकरा कर कार्य स्वतंत्रता से कार्य करना और फिर स्वतंत्रता से नियंत्रण करना यह अनुचित है, पर भगवान की सेवा में नियंत्रण करना यह आवश्यक है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ करना है तो फिर उसको कुछ नियंत्रण चाहिए। भी अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन धनुर्विद्या में बड़े निपुण बन गए थे, कैसे बने वो, उससे उन्होंने अभ्यास किया उसके लिए और नियंत्रण प्राप्त किया कि बराबर निशाना मारना है तो बराबर निशाने पर ही लगेगा तीर। तो हम सबको नियंत्रक बनना ही है, पर किस तरह से नियंत्रक बनना है, भगवान की सेवा के अनुसार, भगवान की इच्छा पूरी करने। अभी अगर मैं प्रवचन दे रहा हूँ और मेरे वाणी पे नियंत्रण नहीं है तो मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल दूंगा, तो मुझे बराबर शास्त्रों के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही बोलना है, उतना तो नियंत्रण होना चाहिए मुझमें। तो हमें नियंत्रण करना जरूरी है, तो पर नियंत्रण करना भगवान की सेवा के अनुसार, भगवान के सेवा के लिए, भगवान की इच्छा के अनुसार है। स्पष्ट है ना?
कंट्रोलर और टेंडेंसी भी आ जाता है,
तो अन्य वो जो है नियंत्रक की सेवा का जो भाव है वह आएगा। तो क्या है कि आत्मा को हमेशा यह चुनाव रहता है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा या स्वतंत्रता का अनुभव करूंगा, और वह चुनाव तो व्यक्ति नियंत्रक नहीं भी हो तो भी वह चुनाव करना पड़ता है। ये कैसे है, ये जो है कि अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे मैं अगर अच्छा कीर्तन करूंगा तो उसमें मुझे गर्व आ जाएगा, तो इसी में अच्छा कीर्तन नहीं करूंगा, तो क्या होगा, क्या उसे गर्व से बच जाएगा, वो उसे लगेगा गर्व से बच जाएगा, पर क्या होने वाला है, कोई दूसरा भक्त है वो अच्छा कीर्तन करेगा, उसका गुणगान होगा, तो वही उस भक्त के प्रति ईर्ष्या आ जाएगी। तो क्या है वो जो जो दुष्संस्कार जो है, अगर मैं करूंगा अच्छा कार्य तो मुझे गर्व आ जाएगा, पर मैं नहीं करूंगा दूसरा कोई करेगा तो उसको उसको क्या होगा, ईर्ष्या आ जाएगी। तो फिर कैसे हम बचेंगे इससे? तो क्या है तो महत्वपूर्ण क्या है कि हम ऐसे नहीं है कि अच्छी सेवा करने से गर्व आता है, गर्व पहले से है। अच्छी सेवा आज जब करते हैं तो गर्व प्रदर्शित करने का मौका मिलता है पकड़ जाता है। तो क्या है, गर्व है ही पहले से, तो गर्व का शुद्धिकरण कैसे होगा, वो सेवा करने से ही होगा। तो इसीलिए हमें सेवा जरूर करनी चाहिए, और अगर सेवा करते करते गर्व भी आ जाएगा तो हमारा वैष्णव शिष्टाचार क्या है, कोई हमारा गुणगान करता है तो बोलता है कि हम ये वैष्णव की कृपा से है, भगवान की कृपा से है, गुरु की कृपा से है, प्रभुपाद जी की कृपा से है, से बोलना है, जहां तक होते अंतरंग भाव में इसको जागृत करना है। और धीरे धीरे हम देखेंगे अगर हम सेवा करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे कि तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि सेवा करने में ही मन लगाने में, सेवा करने में इतना आनंद है, उतना आनंद और दूसरे गुणगान प्राप्त करने में नहीं है। ये गुणगान तो कुछ समय के लिए आएगा चला जाएगा, पर सेवा तो हम सदैव रूप से कर सकते हैं। मैंने मेरे जीवन में तुलना की है कि अगर प्रवचन देने के पहले मैं प्रवचन की तैयारी कर रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, और प्रवचन खत्म होने के बाद फिर अपेक्षा कर रहा हूँ लोग क्या बोलने वाले, तो इन तीनों में देखोगा तो वास्तव में अगर अहंकार की दृष्टि देखेंगे तो जब कोई गुणगान करना है बहुत अच्छा लगता है, पर वास्तव में मैंने देखा है कि जो खुद का जो मन भगवान में जो तल्लीन होता है वह सबसे अधिक जब मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें होता है। फिर जब प्रवचन भी दे रहे तब थोड़ा भाव होता है कि कौन कौन सो रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन समझ रहा है, तो वो भगवान पे उतना मन नहीं लगता है, और बाद में प्रवचन के बाद में बिल्कुल भगवान के याद नहीं रहते तो क्या होता है धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरनेट पे सवाल का जवाब देता हूँ, और फिर सवाल का जवाब तो वहां पे कोई ऑडियंस है ही नहीं, तो आंखें बंद करके बोले तो सुबह भी बोल रहे सारा भगवान पे स्मरण करके बोल सकते हैं। तो हमें ही ये अनुभव से ही पता चलेगा कि मैं सेवा में भी नियंत्रण करूंगा, करना पड़ेगा नियंत्रण कुछ हद तक मुझे, पर वो नियंत्रण के भाव में जितना आनंद है और भगवान के स्मरण में जितना आनंद है वह हम हमारे अनुभव से तुलना करके समझ पाएंगे कि वास्तव में नियंत्रण में ज्यादा आनंद नहीं है, भगवान की सेवा में ही अधिक आनंद है। और फिर नियंत्रण का मौका होते हुए भी हम और नियंत्रक बनते हुए भी हम नियंत्रक के नियंत्रण में आनंद नहीं लेंगे, हम सेवा में आनंद लेंगे। स्पष्ट है?
ये जो पहला उत्तर है, प्रभुपाद एक तुलना देते हैं क्षेत्र मतलब
यो प्रभुपाद जी तुलना देते हैं कि जो कोई व्यक्ति चित्र बना रहा है वही ना,
बोलिए, फार्मर हु इज हैविंग फील्ड एंड वन हु नोज दैट फील्ड क्षेत्र के, ये तुलना देते हैं।
हाँ,
तो इसको थोड़ा समझाइए।
हाँ, तो प्रभुपाद जी एक तुलना देते हैं यहाँ पे तात्पर्य में कि जो क्षेत्र है कि कोई किसान होता है, किसान की खेती होती है, तो प्रभुपाद जी एक्चुअली ये जो उदाहरण है वो अगले इसके लिए अगले श्लोक से श्लोक से दोनों से संबंधित ही है। तो क्या है, जो किसान होता है अगर आप देखेंगे तो जो प्राचीन राज्य पद्धति होती है, राजनीतिक पद्धति, राजा संपूर्ण राज्य का मालिक है और फिर उसके अधीन जो है बाकी सब नागरिक है, उनकी कोई अपनी संपत्ति है, संपत्ति है। तो जो किसान है वह अपने खेती का मालिक है, पर जो राजा है वो संपूर्ण राज्य का मालिक है, वो उसकी खेती का भी मालिक है। तो ठीक उसी तरह से जो क्या है, हमारा शरीर अगर खेती के समान है तो इस शरीर के ज्ञाता हम हैं, हम क्षेत्रज्ञ हैं, पर भगवान पूर्ण सर्व क्षेत्र के ज्ञाता है। तो अभी खेती का उदाहरण क्यों दिया गया है, क्योंकि खेती में क्या होता है, कुछ बीज डाले जाते हैं फिर उससे कुछ उगता है वहां पे, और जिस प्रकार के बीज डालेंगे उसके अनुसार उगेगा कुछ। तो उसी तरह से हम जो है इस अभी आत्मा यहाँ पे है, शरीर यहाँ पे है, तो आत्मा कुछ कार्य करती है, वो कार्य जो है वह बीज के रूप में आते हैं, फिर उससे जो फल आता है वह अगला शरीर होता है। तो उसी तरह से हम इस शरीर के माध्यम से कर्म रूपी बीज डाल रहे हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। तो ये क्षेत्र जो खेती का उदाहरण दो चीजों के लिए दिया गया है, ये कैसे दो प्रकार के स्वामी होते हैं एक खेती के, इस तरह से आत्मा के दो ज्ञाता है, और दूसरा है किस तरह से हम बीज डालते हैं और फिर बीज डालने से उससे कुछ उत्पत्ति होती है, दोनों के लिए उदाहरण दिया है।
ये दो उदाहरण प्रॉपर देते हैं, एक लेक्चर में देते हैं, इधर भी है एक लेक्चर में, तो उसमें एक किसान का बहुत बड़ा खेती रहेगा, एक का कम रहेगा, तो उसका क्षेत्र एक छोटा रह सकता है बड़ा रह सकता है, बराबर। तो उसमें तुलना है कि जो खेती है वो क्षेत्र है और वो जो किसान है वो क्षेत्र के, तो आत्मा और शरीर का तुलना इस तरह से किया गया है, बराबर ना? बराबर ना?
यस, नहीं बराबर। कोई चींटी का क्षेत्र जो है उसकी खेती बहुत छोटी है, जो हाथी है उसकी खेती बहुत बड़ी है। तो इस तरह से आत्मा को अपने पूर्व कर्म के अनुसार अलग अलग तरह का क्षेत्र दिया जाता है। तो इसके बाद में भगवान बताएंगे कैसे मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि,
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि,
सर्वक्षेत्रेषु भारत,
सर्वक्षेत्रेषु भारत,
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम्,
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम्,
यत् ज्ञानं मतं मम,
यत् ज्ञानं मतं मम।
तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, यहाँ पे जो है भगवान बता रहे कि क्षेत्र और क्षेत्र के जो है ये दोनों जो है ये ज्ञान कहलाता है। अभी ज्ञान की परिभाषा भगवान इसी अध्याय में दो बार देंगे। तो ये पहली परिभाषा है संक्षिप्त रूप में कि क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं, इन दोनों को जो समझ जाता है वो ज्ञानी है। और फिर इसी अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में भगवान विस्तारित रूप में वर्णन करेंगे, वहां पर गुणों का वर्णन करेंगे ज्ञान के बारे में, वो हम चर्चा करेंगे विस्तार बाद में जब आएगा कभी। पर यहाँ पे क्या है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं समझने के लिए, अनंत चीजें हैं, और ये अनंत चीजें अगर हम समझने जाएंगे तो कभी उसका अंत ही नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक प्रवचन एक बार एक मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे और तभी एक प्रोफेसर बेनफोर्ड था, तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि अभी आपका आत्मा के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान क्या है। तो उसने कहा कि कभी हमें आत्मा के बारे में कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। प्रभु जी मतलब आपके पास कोई आपका कोई वैज्ञानिक ज्ञान का काम ही नहीं है, प्रभु जी कुछ काम का नहीं आपका वैज्ञानिक ज्ञान। तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, वैज्ञानिक ज्ञान ये अलग विभाग है ज्ञान का, और आध्यात्मिक ज्ञान अलग विभाग है। बोले कि प्रभुपाद वो बोले कि अभी हमें अभी दो बड़े बड़े ग्रंथ हमने लिखे हैं, वो अभी सफर के लिए गए थे सुबह, तो एक गार्डन में थे, बगीचे में थे, वहां पे घास था। अभी हमें दो बड़े ग्रंथ लिखे हैं, कैसे घास उगता है वह समझ गए। तो प्रभुपाद जी बोले आप ही ग्रंथों के बिना में घास उग रहा था। तो फिर वो बुद्धिमान में प्रोफेसर भी बुद्धिमान थे, बोले कि अगर भगवान की इच्छा नहीं थी कि हमें घास का अध्ययन करे तो भगवान ने यह घास रखा क्यों यहाँ पे। तो फिर प्रभुपाद जी बोले कि मेरा पॉइंट यह है कि जिस भगवान ने घास रखा है वो घास का अध्ययन करते पर भगवान का कभी अध्ययन नहीं करते। तो ज्ञान जो है, अगर हम छोटी छोटी चीज के बारे में ज्ञान करना है तो उसका विशाल रूप से ज्ञान हो जाएगा। मेरा एक मित्र अमेरिका में गया, उसने PhD किया, फिर उसका PhD क्या था कि जो नॉर्थ अमेरिका के मच्छर होते हैं उनके पेट में कौन कौन से प्रकार के डाइजेस्टिव बीमारियां होती है। अभी ऐसे ज्ञान से कोई कैसे, तो इससे भी ज्ञान का विकास हो रहा है, पर ठीक है विकास हो रहा है, पर वास्तव में क्या फायदा है। आप अगर यम यम वापिस वरुण भावम कहते हैं और 5-6 साल मच्छर के अंतड़ियों के बारे में चिंतन कर रहे हो, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा, कोई मच्छर के अंतड़ी में कीटाणु बन जाएगा। तो वास्तव में हम अगर अध्ययन ही करना है तो अनंत विषय अध्ययन करने के लिए, पर जो महत्वपूर्ण क्या है तत्व, महत्वपूर्ण तत्व क्या है, आत्मा शरीर और भगवान, जो उपनिषद है वह इन तत्व त्रयों के बारे में वर्णन करते हैं। तत्व त्रय मतलब तीन तत्व क्या है उसको कहते हैं कभी कभी, जगत जीव जगत और जगदीश, तीन तत्व है। और अगर आप ये अध्याय का जो शीर्षक है प्रभुपाद जी ने दिया है, वह क्या है इंग्लिश में, नेचर द एंजॉयर और कॉन्शियसनेस. तो नेचर मतलब क्या है, जगत प्रकृति. तो द कॉन्शियसनेस वह क्या है, जीव. और द एंजॉयर वह है जगदीश भगवान. तो जगत, जीव और जगदीश, यह तीन जो तत्व है उनका वर्णन महत्वपूर्ण है. उनको जो उनका अगर मूलभूत तत्व ज्ञान हो गया तो वह व्यक्ति उसको ही वो ज्ञानी है और यही ज्ञान है. और हम देखते हैं कि भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं पहले कि किस तरह से सातवें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि अभी ये जो ज्ञान मिला पूरा है इसके अलावा तो ज्ञान है ही नहीं. कहते हैं कि ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इतम वक्षाम्य शेषतः यज्ञात्वानेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते. कि यह ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इसके अलावा और कोई ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है. पर फिर हम दूसरी ओर से कहते हैं कि जो भगवद्गीता है यह स्कूल के शिक्षण के समान है. भागवतम जो है ये ग्रेजुएशन है और फिर चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन है. तो अगर भगवान ने कहा है कि इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते कि इससे ऊंचा और कोई ज्ञान है. तो क्या है, भगवान ने जो बताया है वह क्या ज्ञान के प्रधान विभाग बताए और उसके अलावा और कोई विभाग नहीं है ज्ञान के. पर इन विभागों का और विश्लेषण भी होता है. तो अभी इसमें से एक तत्व है भगवान. तो भगवान क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, उसका वर्णन भागवत में आता है. तो अब ये भगवद्गीता भागवतम और चतुर्थाध्याय में एक विचारों का प्रवाह है. भगवद्गीता गिव्स द आइडेंटिटी ऑफ गॉड, भागवतम गिव्स द एक्टिविटी ऑफ गॉड एंड चैतन्य चरितामृत गिव्स द मेंटालिटी ऑफ गॉड. कि भगवान कौन है, उनकी पहचान भगवद्गीता में बताई गई है. भागवतम में भगवान क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, उसका वर्णन है. और फिर चैतन्य चरितामृत में भगवान किस प्रकार से विचार करते हैं. भगवान सोचते हैं कि कैसे ये गोपियां मुझसे ज्यादा आनंद प्राप्त कर रही है तो मुझे वो क्या रस प्राप्त करने मुझे समझना है. इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु को अपनाते हैं. जो तत्व है वो तत्व और बढ़ते नहीं है. तत्व मूलभूत तत्व है, उन सबका वर्णन भगवान ने किया है. पर हर एक तत्व का विश्लेषण अगर हम करने जाएंगे तो वह और विस्तारित भी हो सकता है. तो अभी यह ज्ञान है. और जो भगवान क्या है, भगवान अहम वो सारे क्षेत्रों के ज्ञानी हैं, एक क्षेत्र के नहीं. भगवान आपके शरीर में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, सबके शरीर में क्या हो रहा है वो जानते हैं भगवान. इसीलिए वो क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. तो मायावादी इस श्लोक को क्या करते हैं, उसको ऐसे वाचांतर करते हैं कि वो कहते हैं कि दोनों क्षेत्रज्ञ एक ही है. पर यहाँ पे जो जीव गोस्वामी अपने भगवत संदर्भ में विस्तारित रूप से इसका वर्णन विश्लेषण करते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में जो भगवान हमें बता रहे हैं कि च जो है उसका मतलब क्या है कि एक और क्षेत्रज्ञ है. मैं इस कमरे में हूं अगर मैं ऐसे बोलता हूं और उसके बाद में बोलता मैं भी इस कमरे में हूं
तो कोई
मतलब नहीं है कुछ उसको ना. मैं इस कमरे में हूं और मैं भी इस कमरे में हूं तो भी मतलब आया, मतलब क्या है, जो जो इसके बाद बताया जा रहा है दूसरा कोई व्यक्ति है. मैं इस कमरे में हूं और वो भी इस कमरे में है. तो उस तरह से है वो. तो अभी इसके बाद में भगवान अभी क्षेत्र के बारे में बोलेंगे. क्षेत्र के बारे में जब भगवान बोलते हैं तो वे अलग अलग पद्धति से वास्तव में ये ज्यादा टेक्निकल में नहीं आते हैं भगवान. पर फिर भी क्या है इस अभी इस श्लोक में वे एक सार बता रहे हैं. तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च
तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च
यद्विकारी यतश्च
यद्विकारी यतश्च
सचयो यत् प्रभावश्च
सचयो यत् प्रभावश्च
तत्समासेन मे शृणु
तत्समासेन मे शृणु.
तो तत्क्षेत्रम वह क्षेत्र क्या है, यच्च यादृच्च. यादृच मतलब वो क्या है, उसका तत्व क्या है. तो वास्तव में भी इसका हम बहुत टेक्निकल जाएगा तो हर एक शब्द का जो वहां वर्णन कहाँ आ रहा है अगले अध्याय में इस अध्याय में बोल सकते हैं. पर यद्विकारी इसमें क्या क्या विकार होते हैं तो यादृक क्या है क्षेत्र है उसका वर्णन जो होता है वो छठे श्लोक में आएगा. विकारी जो है उसका वर्णन सातवें श्लोक में आएगा. यतश्च यद वो कहाँ से आया है उसका वर्णन जो है वो तेरहवें चौदहवें श्लोक में आता है. उसका प्रभाव क्या है, वो क्या क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन बाईसवें और तेईसवें श्लोक में आता है. तत्समासेन मे शृणु. यादृक वो छठे श्लोक में वर्णन है, विकारी सातवें श्लोक में वर्णन है, यतश जो है वो तेरहवें और उन्नीसवें श्लोक में है. कहां से आया है, वो भगवान से आया है. फिर प्रभाव जो है उसका बाईसवें तेईसवें श्लोक में वर्णन है. अभी इसका जो है विश्लेषण अलग अलग आचार्य ने अलग अलग पद्धति से किया है. अभी हम इसको ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं भगवान, हम बता रहे हैं कि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। और अभी सारे भगवद गीता में 13वें अध्याय सबसे टेक्निकल अध्याय है, तो इसीलिए यह थोड़ा अध्याय थोड़ा मुश्किल जाएगा आपको। पर बाकी अध्याय खास करके 15वां, 16वां, 18वां अध्याय जो है वो काफी आसान है समझने के लिए। तो अभी इसके बाद में भगवान बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। 13वें अध्याय में जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मार्ग जो है उपनिषदों में बताया गया है। तो जो उपनिषदों का जो सार है वह अधिकांश रूप से इस अध्याय में आ रहा है, और इसीलिए इस अध्याय की भाषा जो भी है वह भी उपनिषदों के समान ही है। आप देखेंगे कई बार उपनिषदों में क्या होता है, विरोधास्पद आता है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वान्तिके, वो चलते हैं वो चलते भी नहीं है, दूर में है पास में भी है। तो वैसे ही आप देखें 13वें अध्याय में भी खास करके 14वें, 15वें, 16वें श्लोक में आता है सर्वे इंद्रिय गुणाभासं सर्वे इंद्रिय विवर्जितं, सब इंद्रिया उनसे ही आती है, उनके कोई इंद्रिया है ही नहीं, वो सबके नियंत्रक है पर वो किसी के भी नियंत्रक नहीं है, इस तरह से होता है, सबके भोक्ता है फिर भी निर्गुण है, ऐसे वर्णन आता है वो। तो ये उपनिषदों की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो वही अभी भगवान बोलेंगे कि जो उपनिषद ने बताया है मैं वही दोहरा रहा हूँ। ऋषिभिर्बहुधा गीतम्
छन्दोभिर्विविधैः पृथा
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव
हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः।
तो ऋषिभिर्बहुधा गीतम्, अनेक अनेक ऋषियों ने इसका वर्णन किया है, और छंदोभिर्विविधैः। तभी छंद जो है ऋग्वेद के श्लोक आते हैं उनका जो मीटर होता है उसको छंद कहते हैं। तो वास्तव में क्या है कि श्लोक, कई बार हम श्लोक इस शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वर्स, पर वो उचित भाषांतर नहीं है। जो वर्स मतलब क्या है, कविता का एक अंग होता है उसको वर्स कहते हैं, पर श्लोक यह विशेष प्रकार का एक विशेष मीटर का एक विशेष लंबाई का जो होता है उसको ही श्लोक कहते हैं। तो ऋषिभिर बहुधा गीतम अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं, अलग अलग प्रकार के मीटर होते हैं। तो अलग अलग पद्धति से क्या हुआ है, भगवान बोले कि ये जो तत्व बताया है उन्होंने, तो ये छंद जो है यह ऋग्वेद के छंद के बारे में नहीं, ये छंद जो है ये चांडोग्य उपनिषद है, उसमें शब्द होता है चंड, छंद, चांडोग्य उपनिषद में यह बताया गया है। तो क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, अगर आप वेद देखेंगे तो वेदों में कर्म कांड ही बताया गया, आपके सारा ज्ञान कांड का वर्णन हो रहा है। तो छंदोभिर विविध ही पृथक, और फिर हेतु मद्भिर मतलब जो न्याय की दृष्टि से वेदांत सूत्र में बताया है। वेदांत सूत्र जो है यह बहुत ही कठिन ग्रंथ है। अभी भानु महाराज ने भाषांतर किया उसका, फिर मैंने उसका एडिटिंग किया था वो किताब पूरा। अभी गोविंद वेदांत सूत्र का जो भाष्य है गोविंद भाष्य, वो बगले विद्याभूषण लिखा है और उसका इंग्लिश में भाषांतर किया। तो अभी वो किताब ऐसा किताब है कि वह एक एक श्लोक समझने के लिए कभी कभी एक दो घंटा लग जाएगा। क्यों, क्या है वह, ऐसे पहले बता रहा था कि अगर दो डॉक्टर हैं, दोनों हार्ट सर्जन हैं, और एक बहुत जटिल केस है हार्ट सर्जरी की, वो बात कर रहे हैं कि हमें ये हार्ट सर्जरी करनी है, वो नीचे के विभाग से हमें सर्जरी करनी है, ऊपर से करनी है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज, ये उपकरण, ये उपाय करना है, ये उपाय करना है, वो सारा अलग अलग प्रकार के टेक्निकल भाषा इस्तेमाल करके बात करेंगे। तो वहां पे एक साधारण व्यक्ति जाएगा तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से वेदांत सूत्र क्या है कि उपनिषदों का निष्कर्ष क्या है उस पर चर्चा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अचानक ऐसा आता है कि तद ब्रह्म इति, कि अभी ब्रह्म ही शब्द का अर्थ क्या है, अभी ब्रह्म ही शब्द का अर्थ क्या है पूछेंगे, शब्द कुछ में देखो बोल सकते हैं कौन से अर्थ है, पर वहां पे क्या है जो चर्चा हो रही है वो ऐसे वो जो चर्चा हो रही है व्यास जैसे बादरायण जो उसके रचना करने वाले, वो क्या बोल वैसे समझ रहे हैं कि सारे जो सुन रहे हैं लोग पढ़ रहे हैं वो जानते हैं सब उपनिषदों को, और फिर वो इस उपनिषद में इस अध्याय में इस श्लोक में ब्रह्म शब्द आया है, तो इस शब्द संदर्भ में, इस श्लोक में ब्रह्म शब्द आया, उसका अर्थ क्या है? या फिर ऐसे बताया गया है कि कोई प्रसंग होगा कि उसमें प्रजापति जो है इंद्र से मिलने आए, इंद्र प्रजापति से मिलने गए और इंद्र ने ऐसा पूछा और फिर प्रजापति ने ऐसा जवाब दिया, तो फिर वो बिना किसी संदर्भ के बोले प्रजापति के शब्द का अर्थ क्या है, प्रजापति उवाच इति और फिर उसका संदर्भ, उसका उसका भाष्य, उसका क्या अर्थ है? तो प्रजापति ने क्या बोला, कहां बोला, कुछ भी बताइए वो किसी को, तो क्या है जो वेदांत सूत्र है, जो वेदांत सूत्र है वह वास्तव में सब उपनिषदों को पढ़ के, केवल पढ़ के नहीं, उनका अधिकांश जो ज्ञान है वो पूरा अंदर होना चाहिए पहले से। ये क्या है कि अगर दो डॉक्टर अगर हार्ट सर्जरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो अलग अलग शब्द वेंट्रिकल एन्यूरिज्म आर्टरी ये सब शब्द इस्तेमाल करें तो हर बार मैं डिसीजन क्या शब्द का अर्थ क्या शब्द का अर्थ क्या समझ पाऊंगा मैं, वो सब कुछ मेरे अंदर मन में होना चाहिए फिर तभी वो बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। तो भानुभाव ने बता रहे थे कि पूरे इस्कॉन में अभी ये वेदांत सूत्र समझ सकता है कम से कम बस 5 या 10 लोग होंगे उसे आप समझ नहीं सकते इसको। पांच दस हो गए, 20-25 हो गए, पर फिर भी ज्यादा नहीं है। और ऐसे नहीं है कि ये कोई कमतरता नहीं है, तो क्या है कि आजकल के समाज में प्रचार के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है। तो क्या है जो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करना है वो इस तरह से प्राप्त करना है जो हमारे प्रगति के लिए आवश्यक है या हमारे प्रचार के लिए आवश्यक है। तो अगर मैं वेदांत सूत्र में प्रवचन दूंगा बोलेगा तो कौन आने वाला है, और आएगा भी कोई तो कौन रहने वाला है वाला। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि हेतु मत दीर्घ निश्चित है कि तर्क के द्वारा ये इस वेदांत सूत्र में जो बताया गया है वही मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हम देखते हैं किस तरह से कि गुरु साधु शास्त्र के वचनों के अनुसार बोलना चाहिए। भगवान भी बता रहे हैं, जो ऋषियों ने बताया है, जो शास्त्र ने बताया, मैं वही दोहरा रहा हूँ अभी।
ये श्लोक को अलग एक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऋषियों ने जो आते हैं ना तर्को प्रतिष्ठम श्रुति योग्यम, बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग मत है इसके बारे में, लेकिन भगवान जो वेदांत सूत्र के रचेता है वो उनका अभी ये देखने करते हैं, ऐसे दृष्टिकोण से देख सकते हैं
क्या? हम इस श्लोक को इस तरह से देख सकते हैं कि अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग वर्णन किया है, पर अब जो निष्कर्ष है मैं दूंगा। अभी यह जो भाव है यह 18वें अध्याय में आता है कि 18वें अध्याय में दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ दान तप करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तप नहीं करना चाहिए, और फिर भगवान बोलते हैं निश्चितम मत, मेरा मत बताऊंगा मैं निश्चित क्या है। तो वहां पर स्पष्ट रूप से हम देखते संदर्भ से कि क्या है कि ये एक पक्ष का मत है, ये दूसरे पक्ष का मत है और भगवान अपना मत दे रहे। तो यहाँ पे इस तरह से भगवान नहीं बोल रहे कि ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है और फिर मैं मेरा मत देने वाला हूँ, तो इसीलिए वो भी एक अर्थ निकाल सकते हैं, पर ये जो संदर्भ है वहां से स्पष्ट रूप से इतना नहीं निकलता है कि वैसे है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वहां पे बताया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो यहाँ पे क्योंकि एक और चीज है यहाँ पे कि भगवान अलग अलग ऋषियों का मत भी नहीं बता रहे यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि यही ज्ञान अलग अलग ऋषियों ने बताया है और फिर उसके बाद में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि पराशर मुनि ने बताया इसके बारे में पराशर संहिता में, फिर अलग अलग ऋषियों ने बताया है तो उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भाव है वह भी सत्य है कि भगवान अलग अलग लोगों का मत बता के फिर उसका समन्वय कर सकते हैं या उस अपना सिद्धांत दे सकते हैं, पर यहाँ पे खास कर बोलता है बहुधा गीतम जो है वो गीत के लिए है। क्या है कि वो ऋषियों ने अलग अलग पद्धति से बताया गया है, तो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों का मत बता के फिर समन्वय नहीं कर रहे इसलिए वो अर्थ संदर्भ से इतना लागू नहीं हो सकता, पर प्रिंसिपल तत्व में जो है वो भी सत्य है कि भगवान वो भी करते हैं कि वो भी अलग अलग मतों का बोल के फिर निवारण करते हैं। फिर इसके बाद में भी 6वें और 7वें श्लोक में भगवान क्षेत्र क्या है उसका और वर्णन करेंगे। तो पहले इदम शरीरम कौनते क्षेत्र बताया था, ये शरीर क्या है वो क्षेत्र है, पर अभी ये शरीर किस चीजों से बना गया है उसके बारे में वर्णन करेंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारितम्। तो यहाँ पे ये श्लोक के दो भाग है। पहला जो भाग है वो क्षेत्र क्या है बता रहा है, और दूसरा छठा श्लोक जो है उसमें, सातवां श्लोक जो है वो क्षेत्र का विकार क्या है बता रहा है। तो हम वो देखते हैं कि क्या है, 24 तत्व है। तो ये 24 तत्वों का वर्णन यहाँ पे आता है कैसे, महाभूतानि अहंकारो। महाभूतानि मतलब जो पांच महान, पांच बड़े बड़े तत्व है। कौन से है वो, भूमि आपो नलो वायु और खम, ये पांच तत्व है। महाभूतानि पांच हो गए, अहंकार हो छह हो गए, फिर महाभूतानि अहंकार हो बुद्धि और अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब प्रधान कहते हैं उसको। तो दो हो गए, कितने हो गए,
आठ
हो गए। फिर इंद्रियाणि दशैकम च, दस और एक ग्यारह। ग्यारह इंद्रिय कैसे क्या है, पांच पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, एक मन। हाँ, इंद्रियाणि दशैकम च, वेरी गुड। तो कितना हो गया फिर, आठ और ग्यारह कितना हो गया,
उन्नीस।
और फिर आखिर आ गया पंचचेंद्रिय गोचर। इंद्रिय गोचर मतलब जो इंद्रियों के विषय है, रूप रस स्पर्श गंध शब्द, 24 हो गए। तो इसमें 24 तत्व आ गए यहाँ पे। तो ये 24 तत्व अभी क्या है, कभी कभी अगर आप देखें उद्धव गीता में 11वें स्कंद में जो है भागवतम के, कभी कभी विश्लेषण करता है, कभी कुछ लोग कहते हैं कि 18 तत्व है, कोई कुछ लोग कहते हैं 22 तत्व है, कुछ लोग 25 तत्व है। तो वहां पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपने तात्पर्य बताते हैं वहां पे कि भगवान कहते हैं कि ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है, और वहां पर चक्रवर्ती बात बताते हैं कि इस तरह से ऋषि गण अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, और इस प्रकार के बुद्धि के प्रदर्शन में उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ कहते हैं। क्या प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि वो मेरी सेवा में ही मेरे ही सृष्टि का विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए कभी 24 बोल सकते हैं, कभी 25 बोल सकते हैं, कभी 26 बोल सकते हैं, अलग अलग नाम संख्या हो सकते हैं। पर महत्वपूर्ण क्या है कि वो विभाजन किस तरह से किया जा रहा है, इस तरह की हम बहुत ही जगत में तत्व क्या है। अभी ये बयान करने का उद्देश्य क्या है कि अगर मैं देखूंगा कि मुझे प्यास लगे तो पानी पी लूंगा, पर क्या है अगर पानी है या लकड़ी है या जमीन, पानी है जमीन है वायु है, इसमें कोई बहुत आकर्षक चीज नहीं है। अगर जरूरत है तो सांस के लिए वायु चाहिए, पर इसमें कोई आकर्षक चीज नहीं है बहुत। तो इस तरह से जब हम भौतिक तत्वों का विश्लेषण करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रलोभन करने वाली जो भी चीजें हैं उसमें कुछ आकर्षक नहीं है वास्तव में। जो किसी व्यक्ति का शरीर है वो दिखने में इतना आकर्षक दिखता है, पर वास्तव में है क्या, वो भूमि रापो नलो वायु से बनाया हुआ है। तो उसमें इतना, अगर हम इसका तत्व क्या, तत्व की दृष्टि देखें तो इसमें इतना आकर्षक क्या है। स्याद अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धि अन्यत्र यते तत्र परिश्रम तत्र समय वीक्षमाना अत कभी भी नाम स्याद। कि जो कभी व्यक्ति समझते हैं कि क्या पूरी दुनिया ये केवल नामों का खेल है, इसको एक नाम दिया है, उसको एक नाम दिया है, उसको एक नाम दिया है, पर वास्तव में क्या है ये सब, ये सिर्फ प्रकृति के अलग अलग तत्वों से बनाया गया है, उसका मिलन हो गया और बन गया है। तो इसलिए इससे प्रलोभन होना की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो उदाहरण लेते हैं इसके लिए कि कैसे है कि पुरुष और प्रकृति है। तो प्रकृति कैसे है कि अगर कोई स्त्री है वो नृत्य करती है, और नृत्य करके फिर लोग आकर्षित होते हैं, नृत्य देखने के आते हैं, फिर उसको पैसा देते हैं नृत्य देखने को, नृत्य करने वाली है वो। पर क्या है, नृत्य करने वाली है, पर क्या है उसको ज्यादा नृत्य आता ही नहीं है, एक दो प्रकार का नृत्य आता है। तो अभी क्या एक दो प्रकार का नृत्य हो जाएगा तो लोग देख लिया, अभी क्या देखने के लिए बच गए, तो लोग तंग आ जाएंगे, चले जाएंगे। तो फिर क्या करते, जब देखते लोग जाने वाले हैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत हाथ अलग पति चाहिए लगती है, तो अभी लोगों को लगता है कि कुछ नया नृत्य करने वाले, तो रुक जाती है। पर क्या है उस नर्तिका बोलते हैं उसको कोई और नृत्य आता ही नहीं, तो थोड़ा हाथ पर हालांकि हिला देगी पर बाद में वही जगह पर आ जाएगी, उसी प्रकार नृत्य करने वाली। पर क्या होता है, जब तक प्रेक्षक सोच रहा है कि अभी कुछ नया आएगा तब उठ के चला जाएगा, और जो नर्तिका है वो थोड़ा बहुत हाथ पैर में आने लगते भी कुछ नहीं आने लगता है, पर बाद में वही चीजें कर लेती है। तो उसी तरह से क्या है, इस भौतिक जगत में बहुत कुछ नया दिखता है और वो नया अंत में क्या है, वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन है। पर क्या होता है, ये आहार निद्रा भय मैथुन का प्रलोभन है, यह सब नए नए रूपों में आते रहता है। तो अब समझे क्या कर रहे, दुनिया में आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो बोले क्या इसमें रुचि लेना है, पर कुछ नया आ जाता है, कुछ नए रूप में आ जाता है, नए रंग में आ जाता है, नए स्वाद में आ जाता है। तो क्या होता है, जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो अभी सोचता है अभी कुछ नया मिलने वाला है मुझे, अभी कुछ नया मिलने वाला है, अभी कुछ नया मिलने वाला है। तो पुनः पुनः चरवित चरवनाणा, वो फंसा रहता है। पर अगर वो समझ जाएगा कि वास्तव में इसमें कुछ नया है ही नहीं, वो प्रेक्षक कब चला जाएगा नर्तिका के नृत्य से देखे, इसके उसको कुछ नया आता ही नहीं, कितना भी वो दिखावा करे नया आने का, उसको कुछ नया आता नहीं, देख लिया मैंने, चले जाने यहाँ से, बहुत हो गया। ठीक उसी तरह से जो है कि इस भौतिक जगत में और कुछ नया ही नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन ही है। जब समझ जाएगा तो फिर वो व्यक्ति उससे निकल जाएगा। तो इसलिए ये तत्व का विश्लेषण इसलिए करना है कि मतलब कि उसमें कुछ है ही नहीं है, भूमि रापो नलो वायु ही है और कुछ नहीं है। और फिर इसके बाद में जो विकार बताए गए, विकार मतलब परिवर्तन, क्या है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। तो अभी यहां पर बताया गया चेतना, अभी साधारणतः तो हम कहते हैं चेतना जो है ये आत्मा से आती है। अगर चेतना आत्मा से आती है तो फिर यहां पे चेतना ये क्षेत्र के विकार के बारे में ऐसे क्यों बताया है, चेतना यह अगर आत्मा से आ रही है तो यह आध्यात्मिक है, पर यहां पे क्या क्षेत्र के बारे में बताया, क्षेत्र भौतिक है और क्षेत्र का विकार जो भी होगा वो भौतिक ही होगा, तो ऐसे क्यों बताया गया है। तो ऐसे बताया जाता है कि दो चीज है, चित्त और चित्त, चित्त और चित्त, ये दोनों अलग है। जो आत्मा है सत चित्तानंद है, तो वह जो है वह चित्त है। इसको अलग पद से बोला तो इसको गोविंद भाष्य में बलदेव विद्याभूषण जी जो है वो ज्ञान रूप और ज्ञान स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। मैं ज्यादा शब्दों में नहीं आऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वो कन्फ्यूज वो मुश्किल हो जाएगा। सरल समझना है तो क्या, एक विचार उदाहरण ले सकते हैं, अगर व्यक्ति कोई बैठ के टीवी देख रहा है तो सामने उसका टीवी है, तो अभी उसकी चेतना की यह शक्ति है कि वो टीवी के स्क्रीन की ओर देख सकता है, या इधर देख सकता है, उधर देखता है, ऊपर नीचे सब जगह देख सकता है। पर अगर वो टीवी में जो चल रहा है कार्यक्रम, वो क्रिकेट मैच चल रहा है मान लो, तो बहुत आसक्त है, तो क्या हो रहा है, उसकी सारी चेतना जो है वो पूरा टीवी में ही लग गई है और कुछ देख ही नहीं सकता वो। क्या होता है, तो मतलब मानो उसकी चेतना जो है बद्ध ही हो गई है कि सिर्फ वो टीवी के स्क्रीन पे जो हो रहा है वही देखता है। तो उसकी जो चेतना की शक्ति है उसे और बहुत कुछ भी देख सकता है, पर क्योंकि आसक्त हो गया टीवी से, इसलिए वो क्या सिर्फ वो टीवी के स्क्रीन पे जो हो रहा है वही देख रहा है। तो उसी तरह से जो आत्मा की शुद्ध चेतना है उसको चित्त कहते हैं। तो चित्त से वो भगवान जो है भगवान को देखता है, आध्यात्मिक जगत को देख सकता है। पर तो अभी क्या है, आत्मा जो है वो टीवी देखने वाला प्रेक्षक है, और जो शरीर और मन है वह टीवी के समान है। तो आत्मा जब शरीर से आसक्त हो जाता है तो द कंडीशन्ड कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल इज कॉल्ड एज चित्त। तो आत्मा की चेतना जो शरीर मन और शरीर से केंद्रित होकर बाहर आती है उसको चित्त कहते हैं, और वह चित्त जो है वह क्षेत्र का विकार होता है। मतलब क्या है कि किसी का स्वभाव तामसिक हो सकता है, किसी का स्वभाव राजसिक हो सकता है, किसी का स्वभाव सात्विक हो सकता है। अभी सबकी आत्मा तो शुद्ध ही है, तो ये स्वभाव फर्क क्यों पड़ा है, क्योंकि वो जो आत्मा की शुद्ध चेतना है वो शरीर और मन से निकल के बाहर आ रही है, और शरीर और मन अलग अलग पद्धति से अलग अलग गुणों के प्रभाव से विचलित हो गया है। तो इसीलिए क्या है कि चेतना यहाँ पे जो बताई है वो आत्मा की शुद्ध चेतना नहीं है, वो आत्मा की जो बद्ध चेतना बताई जा रही है। तो आप देखते हैं ये आत्मा कैसे बद्ध होता है, आपको बताया दो प्रकार की शक्तियां होती है माया की, जिससे कि आत्मा को मोह में डाल जाता है। बताया दो शक्तियां, आवरणात्मिका और प्राक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका मतलब क्या है, ढक देती है, और प्राक्षेपात्मिका ढकल देती है। ये कैसे समझना है, सिंपल है, लोग मूवी जाते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो पहले क्या होता है, लाइट बंद होती है, फिर लाइट चालू होता है। पहले लाइट बंद होता है मतलब क्या है, बाकी सब भूल जाओ, वो अवरमात्मिक शक्ति है, बाकी सब भूल जाओ। फिर उसके बाद में क्या है, एक बार लाइट चल जाता है, वो क्या है, वो उसका स्क्रीन पर लाइट चालू होता है, फिर उससे क्या, वो क्या है, प्रक्षेपात्मिक शक्ति, क्या चेतना उधर तक ही जाती है, और फिर उस मोह में व्यक्ति फंस जाता है। तो उसी तरह से क्या है, जो आत्मा का शुद्ध चित्त है, शुद्ध चित्त है, वह चित्त बन जाता है, और फिर वो केवल शरीर से ही वो दुनिया का अनुभव कर सकता है, उसके अलावा कुछ अनुभव ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए अभी जब हम बद्ध हो गए तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम, तो अभी क्या है, हमारी इच्छा और हमारे द्वेष भी क्या है, वह हमारे शरीर और मन से प्रभावित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति होगा, अगर मेरा दक्षिण भारत में जन्म हो गया तो मुझे इडली सांभर बहुत अच्छा लगेगा, उसका इच्छा होगा मुझे। अगर मैं कहीं और जन्मा होगा, मैं पंजाब में जन्मा, तो पराठा अच्छा लगेगा मुझे। तो क्या होता है, हमारा जो मन और बुद्धि होता है उसके अनुसार हमारी इच्छा होती है। और मैं अगर ईरान में जन्मा होगा तो इराक से द्वेष होगा मुझे। मैं इराक में जन्मा होगा तो ईरान से द्वेष होगा। तो क्या होता है, हमारा जो क्षेत्र है उससे चेतना निकलती है, उसके अनुसार इच्छा द्वेष होता है, और जो इच्छा द्वेष के अनुसार क्या होता है, सुख और दुख होता है। कि अगर मुझे इच्छा के अनुसार जो मुझे मिलता है तो फिर सुख होता है, इच्छा के अनुसार कुछ नहीं मिलता है तो दुख होता है, जो द्वेष के अनुसार जो मिलता है तो उससे भी दुख होता है, और द्वेष के अनुसार जो चाहे नहीं मिलता है वो दूर चला जाता है तो उससे भी सुख होता है। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषुदायमानः। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना बताते हैं कि जीवात्मा जो है वो क्या है, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना, कि प्रिय और अप्रिय का वियोग और योग, उसी में सारा जीवन चला जाता है जीवात्मा का। तो इसी तरह से क्या है, हमारा इच्छा और द्वेष जो है वह हमारे क्षेत्र के विकार से प्रभावित है। क्या है कि अगर मैं तमोगुण में होगा तो हिंसा करने में, विध्वंस करने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। अगर मैं सत्वगुण में होगा तो फिर मेरा जो विचारधारा है वो अलग पद्धति होगी, होगी अलग अलग चीज़ों में आनंद होगा। और हम देखेंगे कि आजकल जो मूवीज भी आते हैं, मूवीज में भी रजोगुण तमोगुण बहुत पड़ गया है। कैसे होता है, पहले जो मूवी में लड़ाई भी होती तो क्या होता है, कुछ डिछुम 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 होता था थोड़ा बहुत, पर एक आयो दो पांच दस लोगों को मारेगा। पर अभी एक्शन मतलब का एक बड़ा इमारत तो बूम फूट जाता है, तो फिर लोग मजा आ गया। क्यों, क्या है, वो तमोगुण जितना बढ़ जाता है उतना वो तमोगुण को उत्तेजित करने के लिए और चाहिए, और वो विनाश चाहिए। उसके बिना जो होता है, उसके बिना व्यक्ति को कुछ मजा नहीं आता है। तो क्या है कि जो हमारा इच्छा और द्वेष है, हमारे सुख और दुख जो है, वह हमारे क्षेत्र के अनुसार प्रभावित होता है, और उसके अनुसार ही हमें अलग अलग प्रकार से हम अनुभव करते हैं इस भौतिक जगत को। तो अभी अगले प्रवचन में हम देखेंगे कि ज्ञान क्या है, वो 8-12 श्लोक में। कोई सवाल है?
जैसे कि आत्मा का जो शरीर और मन के द्वारा जो बाहर निकलता है, वो चेतना परिवर्तित चेतना जो आपके साथ जो शुद्धिकरण होता है, तो शरीर और मन तो वही रहते हैं, वही गुण उसमें रहते हैं, शुद्धिकरण में ऐसा क्या होता है?
तो शुद्धिकरण जो होता है, तभी वास्तव में क्या होता है, शरीर वही रहता है पर मन काफी प्रभावित कर रहा है। देखिए मन जो है थोड़ा जटिल विषय है, कि क्या है कि अभी मन जो है ना, वह एक चीज है, वस्तु है, भौतिक तत्व है, पर वह क्या है, सर, ये लकड़ी जैसा तत्व नहीं है, ये जो ये चीज है ये। तो मन क्या है, मन सूक्ष्म है, तो इसीलिए मन का परिवर्तन होता है। ये तो दर्पण मार्जन जब हम कहते हैं, तो मन जिस प्रकार से विचार करता है, वो विचार करने की पद्धति बदल जाती है। जब विचार करने की पद्धति बदल जाती है तो फिर सारे दुनिया को देखने की पद्धति बदल जाती है, तो उससे थोड़ा शरीर में परिवर्तन हो सकता है। व्यक्ति अगर तमोगुण में रहेगा तो कुछ साफ सफाई नहीं करता होगा, सत्वगुण में आएगा तो अच्छा और अच्छी तरह से रहेगा, पर वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या, अंदर से परिवर्तन आता है। तो जो आत्मा है उस पर, मान लीजिए अभी ये पीछे यहाँ पर ट्यूबलाइट है, अभी ट्यूबलाइट पे अगर मैं लाल कांच डाल दूंगा उससे क्या होगा, लाल रोशनी आएगी, पीली कांच डालूंगा तो पीली रोशनी आएगी। उस तरह से क्या होता है, जो आत्मा की शुद्ध चेतना है पर उस पे जो माया का आवरण है सत्व रजतम गुण का, उसके कारण वो जो चेतना अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है। तो अभी हम शुद्धिकरण करते हैं, हम कई बार आत्मशुद्धिकरण कहते हैं, पर शुद्धिकरण जो है वो मन का शुद्धिकरण है। तो मन का शुद्धिकरण होता है तो मतलब क्या है कि जो आवरण है उसको हम उसका दूषण कम कर रहे हैं और फिर वो शुद्ध होता है। और जब पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो मतलब वो आत्मा में अपना कोई संस्कार, आत्मा में नहीं मन में कोई और संस्कार रहता ही नहीं है अलग जो भौतिक संस्कार। तो जो भी आत्मा चाहती है, आत्मा की शुद्ध इच्छा है, उसके अनुसार ही आत्मा की कार्य करता है। तो इसलिए अभी क्या होता है, अभी अगर मुझे इच्छा तो सुबह उठ के मुझे अच्छा जप करना है, ये इच्छा होती है। पर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मन से सो जाओ, तो क्या होता है, जो मन अभी हमारा क्या है, शत्रु है। पर जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो वो मन की कोई और स्वतंत्र इच्छा हमारे आध्यात्मिक इच्छा के विरुद्ध नहीं रहेगी। तो मन को अगर समझना है तो कैसे है, वो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है उसमें कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं कि अगर आप चालू कर दो तो ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ऐसे ऐसे कार्य करेगा। अगर मुझे कुछ और करना है तो उसको परिवर्तित करना पड़ेगा, मुझे ध्यान पूर्वक परिवर्तित करना पड़ेगा। और फिर बार बार मैं परिवर्तन करते रहूंगा तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह कंप्यूटर समझ जाएगा कि अरे अच्छा ये व्यक्ति को ऐसे ही चाहिए, तो फिर वो उल्टा जो चीज़ है वो नहीं करेगा। फिर उसी तरह से क्या होता है, अगर मन काम वासना के जाता है पर मैं उसको लेके आता हूँ, ये तो निश्चय मनश्चंचल ततस्ततो नियमित आत्मनिय विषम नियत 25 शोक में होते भगवान छठे अध्याय के, कि मन को आप वापस ले आओ, वापस लेके आओ। तो ऐसे बार बार अगर हम लेके आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मन का प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा और फिर वो मन अनुकूल हो जाएगा। तो शुद्धिकरण मतलब क्या है, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन होता है। लास्ट क्वेश्चन,
ये श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, I'll read it in English. Then there is desire, hatred, happiness and distress which are interactions represented of the five great elements of the gross body. इसका मतलब क्या है?
हाँ, तो जो हम प्रभा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख जो है वह जो पांच स्थूल तत्व है उनसे संबंधित है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे जो स्थूल शरीर है उसके अनुसार हमारा इच्छा द्वेष परिवर्तित होता है। अगर मैं मोटा हूँ तो फिर क्या मुझे लगेगा, अरे मैं ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, ज़्यादा पतला हूँ तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया हूँ। अगर मैं पतला हूँ चाहता हूँ कि मोटा बनना है, अच्छा सशक्त बनना है, कमज़ोर हो ज़्यादा सशक्त बनना है, तो फिर क्या है? कोई व्यक्ति को देखा अरे इतना सशक्त है तो मुझे उससे ईर्ष्या हो सकती है। तो मतलब क्या है कि हमारा इच्छा द्वेष सुख दुख जो है वह हमारे ये इस पांच तत्वों का शरीर जो बना है वो उससे प्रभावित रहता है पूरी तरह से। तो एक बार एक भक्त प्रवचन दे रहे थे कि आप आपका शरीर नहीं हो, तो वहां पे एक बहुत ही मोटी स्त्री आई थी, बोले आप आपका शरीर नहीं हो, थैंक गॉड आई एम नॉट माय बॉडी, बहुत कृतज्ञ हो गया मेरे शरीर नहीं हो। तो इस तरह से क्या है कि किस तत्व ज्ञान से किस विचार से क्या प्रभाव होगा, वो इच्छा द्वेष से बहुत प्रभाव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की गौर, भक्तवृंद की गौर, प्रेमानंद की।